एक नए शोध में सामने आया है कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में फ्लू के मामलों में तेज बढ़ोतरी देखे जाने के बावजूद भी लोग बीमार पड़ने को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। 2023 में हजारों मामले पहले ही दर्ज हो चुके हैं और आशंका है कि इन्फ्लुएंजा का मौसम इस साल जल्दी शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अभी से तैयार रहना चाहिए। शोध कहता है कि कोरोना काल के बाद ऑस्ट्रेलिया में लोग इन्फ्लुएंजा के लक्षणों को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक टीकाकरण कंपनी सीएसएल स्क्वेरिस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड्स टू इन्फ्लुएंजा इंडेक्स में 1000 से अधिक 18 साल से अधिक उम्र के वयस्कों से फ्लू को लेकर उनकी चिंताओं के बारे में पूछा गया। एक तिहाई लोगों का कहना था कि उन्हें फ्लू एक हद तक गंभीर लगता है, जबकि 18 से 24 साल के वयस्कों में 5 में केवल एक व्यक्ति इस वायरस को लेकर चिंतित दिखे। फेडरल स्वास्थ्य विभाग के हवाले से आए आंकड़ों के अनुसार 2023 में अब तक 15,000 से अधिक इन्फ्लुएंजा के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डॉक्टर जैक टर्नर बचाव और रोकथाम विशेषज्ञ जीपी हैं। उनका कहना है कि नए रुझान दिखाते हैं कि बच्चों में इस बीमारी के तीव्र लक्षण दिखने का खतरा सबसे अधिक है।
One of the interesting things though is that the really young people, so i.e. infants, babies, toddlers all the way through to primary school, there's actually been an uptick and a bit of a surge in young people having to present to hospital for the influenza or the flu. So they're getting more symptoms that are more severe, and often this is related to breathing capacity rather than kind of runny nose or sore throat. So they're quite life-threatening.
Influenza वायरस के द्वारा फैलने वाली सांस की बीमारी है, जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में आसानी से फैलती है। ये वायरस सूक्ष्म बूंदों के रूप में खांसने, छींकने, गले लगने, चुंबन और भीड़भाड़ में गाने से हवा के जरिए फैलता है। इसके लक्षण बुखार, ठंड लगना, शरीर में दर्द, खांसी, जुखाम, सरदर्द और थकान के रूप में सामने आते हैं। डॉक्टर टर्नर का कहना है कि हर व्यक्ति के लक्षण तीव्र हों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि लोग सतर्क रहें।
Getting knocked out for a couple of weeks, even if you have to go to hospital and you recover fine, that's still multiple weeks and days out of your life. And I see patients regularly that don't look after themselves, don't take it easy. Keep going to work, spread symptoms and the flu around, and then because they haven't looked after themselves, they often are coughing and spluttering for up to sort of 6 or 8 weeks. So I think it's a really important thing to think about, not just about yourself, but people that are vulnerable, and that you catching a milder version of it could actually mean spreading it to someone who catches or has a much more severe response to it.
Corona mahamari aur uske lockdown ke baad flu ke mamlon mein bhari giravat dekhi gayi thi. 2021 mein Australia bhar mein flu ke keval 598 mamle aur ek bhi mrityu nahi darj ki gaye the. इसके बनिस्बत 2017 में इस बीमारी ने 1200 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाइयों की जान ले ली थी। हालांकि 2021 की इस प्रसार की धीमी गति ने विशेषज्ञों को फ्लू के नए रूपों के लिए तैयार होने की भी प्रेरणा दी थी। पिछले साल यानी 2022 में ऑस्ट्रेलिया में 225,000 से ज़्यादा इन्फ्लुएंजा के मामले और 308 संबंधित मृत्यु दर्ज की गई। डॉक्टर टर्नर का कहना है कि कोरोना काल के बाद एक अच्छी चीज जो हुई वो यह कि लोगों को ये समझ आ गया है कि संक्रामक रोगों के प्रसार को किस तरह रोका जा सकता है। वे कहते हैं कि उनके मरीज अब मास्क पहनने और संपर्क कम करने के लिए ज्यादा राजी रहते हैं।
You'd have patients coming in that no one would ever wear a mask, and it was very confronting for people to do so. And now I see patients just coming in, and it's almost a policy. For lots of people, if you're going into emergency, if you're going into an area where there might be vulnerable people, that people are aware of those sorts of things and they're definitely really compliant.
विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के आंकड़े दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलियाइयों के फ्लू ग्रसित होने की संभावना कम से कम 100 गुना अधिक हो गई है। जहां 2022 के बनिस्बत 2023 के शुरुआती दो महीनों में फ्लू संक्रमण की दर 100 गुना से भी अधिक दर्ज की गई, ये समझना ज़रूरी है कि 2022 का 98 संक्रमणों का छोटा आंकड़ा कृत्रिम रूप से कम यानी आर्टिफिशियली लो बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सख्त तालाबंदी ने फ्लू के प्रसार को लगभग खत्म कर दिया था और ये तालाबंदी नियम खत्म होते होते 2022 का मार्च माह आ गया था। बावजूद इसके प्रोफेसर रॉबर्ट बॉय, जो कि बाल रोग और संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि इस साल से फ्लू संक्रमण दर फिर अपने सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगी।
Flu should be taken seriously. As many as 3,000 Australians die every year from influenza, and many more will have to see their GP or get hospitalised. It's a disease that can be prevented, and it's worth preventing.
Professor Boy ये भी कहते हैं कि flu का मौसम इस साल जल्द शुरू हो सकता है.
The flu season is unpredictable, but it usually runs between May and September. Now, last year, it kicked off in April, May, and peaked already by early June, which was 2 months early. The Northern Hemisphere season kicked off 2 months early this year as well. So there's every possibility that this year's season will kick off in May.
Australian Attitudes to Influenza Index दिखाता है कि 58% ऑस्ट्रेलियाइयों को ये जानकारी ही नहीं है कि फ्लू से बचने के विकल्प उपलब्ध हैं। मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना, खांसते वक्त रुमाल या कोहनी का प्रयोग करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये सब बीमारी का प्रसार रोकते हैं, पर फ्लू रोकने के सबसे सटीक तरीकों में एक फ्लू का सालाना टीका लेना है। इस साल फ्लू के प्रसार की बढ़ी संभावना को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह है कि जितनी जल्द हो सके टीका लगवा लिया जाए। डॉक्टर जैक टर्नर जोर देकर कहते हैं कि अगर आपको कोई भी लक्षण है तो आप खतरे में हो सकते हैं। आपको अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से बात कर फ्लू शॉट के बारे में विचार करना चाहिए।
Definitely, if you have other comorbidities like asthma or different things, now is the time to get prepared because if you are having a flu vaccine, it takes a couple of months to kick in really well, and you want it to be at its peak performance in the middle of winter when arguably the flu will be the worst.
SBS News से सैम डोवर की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया है वृषाली जैन ने।